कैसे है ये खेल समय के बदले क्या क्या रूप रे, कहीं छाव में जीवन है ये कहीं कड़ी है धूप रे, हो
वासुदेव कृष्ण मुरारी ब्रज बिहारी द्वारिकाधीश पधार रहे हैं।
सीधे सीधे कह देता, गोकुल का ग्वाला आ रहा है।
ये गडरिया हमसे क्या लेने आ रहा है?
श्री कृष्ण का पधारना हमारा सौभाग्य है।
कल्याण भव। मैं पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आया हूं। आप जानते हैं कि पांडवों ने वनवास और अज्ञातवास की सब शर्तें पूरी कर दी हैं। अब आप अपने वचन अनुसार आधा राज्य महाराज युधिष्ठिर को लौटा दें।
भीख मांगना था तो स्वयं आकर हाथ फैलाते।
पांडव भीख नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं।
और ना दूं
तो फिर भाई से भाई लड़ बैठेंगे, भीषण युद्ध होगा।
आप शांति प्रस्ताव लाए हैं या युद्ध की धमकी देने आए हैं? हाँ,
मैं धमकी नहीं दे रहा, केवल युद्ध के भयंकर परिणाम से सावधान करना चाहता हूं। पांडवों से मेल कर लो, भाई जब भाई से मिलेगा तो फिर विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, काली की विकराल गदा, ब्रह्मा का अस्त्र, शिवजी का धनुष तुम दोनों की एकता को नहीं पछाड़ सकेगा।
दुर्योधन, कृष्ण कन्हैया के प्रस्ताव को मान लो, एकता में ही शक्ति है।
हमें ऐसी एकता की कोई आवश्यकता नहीं।
दुर्योधन, ये अभिमान ठीक नहीं।
ये अभिमान तो छत्रपति राजाओं का श्रृंगार है, मैं इसे त्याग नहीं सकता।
अर्थात तुम आधा राज्य नहीं दोगे?
भुजाओं में बल है तो युद्ध करके ले लें।
युद्ध को टालने के लिए आधा राज्य ना सही, पांच पांडवों को पांच गांव ही दे दो।
पांच गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर धरती भी नहीं मिलेगी।
तो फिर याद रखो दुर्योधन, 13 वर्षों में पांडवों ने देवताओं से जो शस्त्र और वरदान पाए, केवल उन्हीं के बल से पांडव समस्त कौरव मंडल को नष्ट कर सकते हैं। तुम सब नष्ट हो जाओ।
उसके पहले तो हम तुम्हें नष्ट कर देंगे, देखते क्या हो। इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, आगे बढ़ो।
दुर्योधन, मैंने यदि कौरवों के विरुद्ध कभी हथियार ना उठाने की प्रतिज्ञा ना की होती तो आज अपने सुदर्शन चक्र से तुम्हारे सरों का ढेर लगा देता। बचोगे तुम फिर भी नहीं, युद्ध भूमि पे पांडवों के हाथों तुम अवश्य मारे जाओगे।
शांति दूत बनकर आए और युद्ध की धमकी देकर चले गए। अच्छा है,
तो अब युद्ध होगा।
गुरुदेव, दुशासन, मामा श्री और कर्ण युद्ध की तैयारियां करें। पितामह, आप सेनापति का पदभार संभालेंगे।
वो तो संभालना ही होगा, क्योंकि मैंने हस्तिनापुर के सिंहासन की सुरक्षा का प्रण लिया है। परंतु दुख इस बात का है कि आज तुम्हारा हट मुझे अपने प्रिय अर्जुन और पांडवों के विरुद्ध शस्त्र उठाने पर विवश कर रहा है। परंतु युद्ध में केवल क्षत्रिय भाग लेंगे। यदि कर्ण युद्ध में भाग लेगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा।
परंतु पितामह, आप निश्चिंत होकर सेनापति का पदभार संभालें, आपकी इच्छा विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।
क्या हुआ पार्थ? अर्जुन, अर्जुन तुम विचलित क्यों हो गए? बताओ कुंती कुमार, क्या बात है?
मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता मैं।
ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों नहीं लड़ सकते?
मेरे बाणों के निशाने पर अपने ही सगे संबंधी होंगे, तो फिर मैं बाण कैसे चला सकता हूँ?
ये देव मंदिर नहीं, कर्तव्य का संग्राम है। तुम्हारे पितामह और गुरु द्रोण भले कितने ही अच्छे हैं, परंतु प्रतिज्ञा और कर्तव्य के बंधन से बंधे हैं, इसीलिए अधर्मियों का साथ दे रहे हैं। तुम्हें उनका वध करना होगा।
मैं अपनों के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता, वासुदेव नहीं रंग सकता।
तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। यदि तुम धर्म का राज्य स्थापित नहीं करोगे तो अधर्म का राज होगा। जिन कौरवों ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करना चाहा था, वही पापी हाथ तुम्हारी माँ बहनों को सबके सामने निर्वस्त्र कर सकते हैं, इसलिए युद्ध करो। आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, न्याय और धर्म के लिए युद्ध करना हिंसा नहीं, वीरता है। अर्जुन, तू किसी के मरने का दुख मत कर। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न सोष्यति मारुतः। सुन अर्जुन, न आत्मा मरती है, न मार सकती है, ना अग्नि इसे जला सकती, ना जल इसे डुबा सकता है। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा नए शरीर में प्रवेश करने के लिए पुराने शरीर को छोड़ देती है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है।
परंतु अज्ञानवश मैं आज तक आत्मा को नाश होने वाली वस्तु ही समझता रहा हूं।
मैं तुझे समझाता हूं, मेरा विराट रूप देख। तू मृत्यु की चिंता करता,